आत्मभावना लेक्चर नंबर 18 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सौवसाहूणं येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। यह आत्मभावना नामक शास्त्र है जिसमें समाधि तंत्र ग्रंथ जो पूज्यपाद स्वामी का है उस पर कांजी स्वामी के प्रवचन इसमें है। अभी हम समाधि तंत्र के 11वें नंबर का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, श्लोक नंबर 11। अभी महीने भर का गैप पड़ गया ना बीच में पढ़ा, वेरी गुड। देखो जरा श्लोक 10 निकालो, केवल उसका अन्वयार्थ देखते हैं। यहाँ तो पहले में पहले देखो, शुरुआत से हमने क्या देखा था, अरिहंतों का सिद्धों का वगैरह स्वरूप देखा था। अरिहंत की वाणी कैसी उसकी भी बात हमने देखी थी। उसके बाद यहाँ हमने अंतरात्मा बहिरात्मा और परमात्मा तीन प्रकार होते हैं उसकी भी बात देखी थी, और बहिरात्म पना त्यागना चाहिए, हर एक के उन्होंने लक्षण भी बताए थे, परमात्मा के अलग अलग नाम भी बताए थे। श्लोक नंबर 7 में ये बात बताई थी कि बहिरात्मा इंद्रियों के द्वार से जो बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने में ही प्रवृत्त रहता है, और आत्मज्ञान थी वो वंचित है, परांगमुख है, यानी शरीर को ही वो आत्मा मानता है। श्लोक नंबर 8 और 9 में ये बताई थी बात कि जो मूढ़ बहिरात्मा है वो मनुष्य देह में रहले आत्मा को ही, मनुष्य तीर्यंच के देह में रहले उसको तीर्यंच वगैरह मानता है, यानी जो देह धारण किया है उस रूप मानता है अपने को भी और पर को भी। 10 नंबर के श्लोक में ये बताया था अज्ञानी बहिरात्मा, मैं गुजराती में पढ़ रही हूँ, बीजाना आत्मा साथे रहेला अचेतन એટલે ચેતના રહિત બીજાના શરીરને પોતાના શરીર સમાન જોઈને બીજાના આત્મા રૂપે માને છે, અધ્યવસાય કરે છે ને, એ તો ગલત માન્યતા ઉસકી હોતી હૈ, યાની જૈસે અપને કો માનતા હૈ વૈસે પર કો ભી માનતા હૈ। અબ ઇસકે પશ્ચાત અભી 11 નંબર કા હમ શ્લોક પઢેંગે। એવમ વિધ અધ્યવસાયાત કિમ ભવતી ઇતિ આહ, એવમ વિધેને ઇસ પ્રકાર સે अध्यवसाय नहीं हो तो जो खोटी मान्यता चल रही है ना उसकी, माने छे ऐसा बताया था, तो उसके कारण क्या होता है उसकी बात यहाँ बताने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है ना नीचे श्लोक नंबर 11 के ऊपर एक लाइन लिखी थी उसके के एवं प्रकार ना अध्यवसाय थी शू थाय छे ते कहे छे। अब हम श्लोक पढ़ेंगे। स्वपराध्यवसाय न देहेश्व विदितात्मनाम वर्तते विभ्रमः पुंसाम पुत्र भार्यादिगोचर। यहाँ उसका अर्थ देखते हैं, श्लोक का अर्थ अन्वयार्थ जहाँ लिखा है ना उसको देखना है। अविदित आत्मनाम पुंसाम, अविदित विदित यानी नोन, एक ऐसे है जिसको अपने आत्मा का स्वरूप पता नहीं है, ऐसे आत्मा ना स्वरूप थी अज्ञात पुरुषों ने, यानी जिसको आत्मा का स्वरूप मालूम नहीं है ऐसे जीवों को, अज्ञानी को, देहेशु यानी शरीरों में स्व पर अध्यवसायन पोतानी यानी परनी आत्मबुद्धि ना कारणे, यानी इस शरीर में अपने पने की बुद्धि, सामने वाले के शरीर में ये मेरे पुत्र ये भार्या इस तरह से बुद्धि, उसके कारण यानी ये शरीर में आत्मबुद्धि के कारण इसी को अध्यवसाय कारण पुत्र भार्यादि गोचर पुत्र स्त्री आदिकना विषय में विभ्रम वर्तते, विभ्रम वर्तते छे, वर्ते छे, यानी उसकी वो भूल हो जा रही है, विभ्रम यानी भ्रांति हो रही है। अभी इसी की टीका पढ़ेंगे हम। पुरुषों ने विभ्रम अर्थात विपर्यास वर्ते छे, विपर्यास का अर्थ क्या, विपरीत ज्ञान, भ्रांति। केवा पुरुषों ने, कौन से जीवों को ये विभ्रांति होती है? पुरुष का अर्थ वो स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, जीव आत्मा। देखिए ते आत्मा थी अजान, आत्मस्वरूप ने नहीं जानना पुरुषों ने, यानी उन्हीं को ये भ्रांति होती है, रहती है। साथी करीने ते विभ्रम वर्ते छे, यानी ये भ्रांति क्यों हो रही है? तो स्वपर्ण अध्यवसाय थी, स्वर पर के अध्यवसाय से ये भ्रांति हो रही है। तो विभ्रम क्या थाई छे, यानी अपने और परपना की मान्यता किस में हो रही है? स्वर परपने की मान्यता अपन किस में हो रही है? आत्मा में नहीं,
हाँ
वो शरीर में। हाँ तो शरीरों विषय, यानी इस शरीर में जो हम जिस देह में रहते हैं उसमें तो मैं पने की भ्रांति, और सामने वाले को उस शरीर जो दिख रहा है उसमें वो पर जीव की भ्रांति। तो केवो विभ्रम थाय छे, पुत्र भार्या आदि विषयक विभ्रम थाय छे। परमार्थ एटले वास्तव में पुत्र स्त्री धन धान्यादि आत्मीय एने पोताना तेमज उपकारक नहीं हुआ छता, एने वो ना अपने है ना ही कोई उपकार कर रहे, फिर भी ते विभ्रमित पुरुष तेमने आत्मीय तथा उपकारक माने छे। यानी ये मेरा, ये पुत्र मेरा कहना बात अलग है और ये मान्यता की बात है, उपकारक माने छे। तेमनी संपत्ति मा इतले आबादी मा ते संतोष तथा तेना वियोग मा महासंताप अने आत्मवधाधिक करे छे। यानी किसी के धन का एकदम कोई वियोग हो जाए, अभी हम देखते हैं ना रोज न्यूज़पेपर ने कुछ ना कुछ खबर आती है कि गांव का गांव पूरा पहाड़ के नीचे चला गया, तो क्या हुआ, न धन रहा ना स्त्री पुत्र रह गए। यही कहते हैं कि संपत्ति के आबादी वो बढ़ जाए तो हर्ष मानता है, तेना वियोग मां महासंताप अने आत्मवधाधिक यानी आत्मघात भी करता है। ये सब क्यों? क्योंकि भ्रम हो रहा है उसे। भावार्थ, जे पुरुषों ने आत्मस्वरूप नो यथार्थ ज्ञान नथी, ते वो पोताना शरीर मा पोताना आत्मानी अने परना शरीर मा परना आत्मानी कल्पना करी स्त्री पुत्रादिकना विषय मा विभ्रांत रहे छे, अर्थात पोताना शरीर नी साथे स्त्री पुत्रादिना शरीर संबंध ने ज पोताना आत्मानो संबंध माने छे। यानी ये सब संबंध शरीर के कारण है। अब ये जीव का शरीर के साथ संबंध है और बाकी उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो हम असमान जाति द्रव्य पर्याय कह रहे हैं, तो उसके कारण इस संबंध से जो बाह्य में देखने में आता है हमारे पुत्र हुए, तो उस कारण क्या कहते हैं, वो जीव को भी, यानी उसको जीव अलग मानता ही नहीं, वो शरीर ही जीव है ऐसा मानता है और वो अपने है ऐसा मान लेता है। बहिरात्मा यानी ये अज्ञानी जीव स्त्री पुत्र मित्रादि अनात्मीय अर्थात पर होवा छता, आत्मीय ने अपने, अनात्मीय ने जो अपने नहीं है पर है, आत्मा के जो हो गए वो आत्मीय है, तो ये तो कोई आत्मा के है ही नहीं, अनात्मीय है पर होवा छता तेमने आत्मीय माने छे, ने मेरे है ऐसा मानता है, अने पोताने अनुपकारक होवा छता, यानी उसका कोई उपकार नहीं हो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कुछ उसका उपकार अपकार कुछ है ही नहीं है, तो अनुपकारक हुआ छता, अपकारक हुआ छता नहीं कहा, अनुपकारक, उपकारक नहीं है। हाँ नहीं तो अपकारक मानेंगे उसको तो वही हुआ ना, कोई उपकारक है कोई अपकारक है। हाँ तेमने उपकारक मानी तेमनी रक्षा नो प्रयत्न करे छे, तेमना संयोगादि मां सुखी थाय छे अने तेमना वियोगादि मां महासंताप माने छे। ये माने छे की बात है, देखो ये सम्यक दृष्टि को भी वियोग में दुख होगा, रोना होगा। हम देखते हैं प्रथमान योग में हम कहानियां पढ़ते हैं, रामचंद्र तो सीता के वियोग में कहो या लक्ष्मण के वियोग में कैसे विलाप करता था, परंतु वहां वो भ्रांति वाली भूल नहीं है। हाँ, आत्मवधपण करे छे विशेष शरीर नो संयोग थवा अने छूटवानी अपेक्षा है, जन्म मरण होय छे तेने पोताना जन्म मरण मानी हूँ उपजो हूँ मरीश एम माने छे। ए छड़ाना में बताए तन उपजता अपनी उपजमान, तन नशत आप को नाशमान। उसके बीच में जो उत्पन्न से नाश होने तक जो जो अवस्था है वो मेरी है ऐसा मानता है, यानी इसने उससे वही मेरी उत्पत्ति हुई और मैं मरूंगा तो उसने अपने को उतना ही माना, मनुष्य पर्याय जितना मैं हूँ इतना ही अपना अस्तित्व माना, जो अपना कायमी अस्तित्व उसको पहचाना ही नहीं। वही शरीर नी ज अपेक्षाएं अन्य जीवों थी संबंध माने छे, जेम के जेनाथी शरीर निपजू तेने पोताना माता पिता माने छे, शरीर ने रमाड़े तेने पोतानी रमणी माने छे, शरीर वड़े निपज्या तेने पोताना दीकरा दीकरी माने छे, शरीर ने जे उपकारक माने छे तेने पोतानो मित्र माने छे, तथा शरीर नु बुरु करे तेने पोतानो शत्रु माने छे। ये सभी शरीर से संबंधित उसको कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है इत्यादि रूप तेनी मान्यता होय छे। मान्यता की बात चल रही है, घणु शू कहिए हर कोई प्रकार वड़े पोताने अने शरीर ने ते एक रूप ज माने छे। ये मान्यता की बात चल रही है यहाँ पर, और यहाँ मूषमार प्रकाशक में देखा था हमने, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध घने घने ने बहुत है, और ये इसकी मान्यता पुष्ट होती थी क्योंकि निमित्ताधीन दृष्टि है ही उसके। वही जेम कोई बहावरो बैठो तो बहावरो ने पागल, ये भी उदाहरण उसी का है ना मोक्षमार्ग प्रकाशक का। त्या कोई अन्य ठिकाने थी मानस घोड़ा ने धनादि कावी उतरिया, जैसे कोई मान लेते गांव के बाहर कोई बैठा था आदमी, उसने देखा नदी के उस पार छोटी छोटी नदियां होती है, तो क्या है राजा का कोई सैन्य आया तो उन्होंने वहां तंबू वगैरह खड़े कर दिए, वहां पड़ाव डाला उन्होंने, घोड़े बांधे, ये सब ले लिया। मानस घोड़ा ने धनादि कावी उतरिया, वो तो उन्होंने एक रात के लिए पड़ाव डाला है। ते सर्व ने आ बहावरो पोताना जानवा लाग्यो, अरे वाह 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 मेरे ये सारे हो गए, पण ए बधा पोतपोताने आधीन होवाथी तेमा कोई आवे कोई जाए ने कोई अनेक अवस्था रूप परिणमे एमे सर्वनी पराधीन क्रिया हुआ थवा छता, यानी उसके वो पराधीन है उसके अपने अपने आधीन है और ये मानता ये मेरे है सब, तो मेरे है तो वो मेरे आधीन होने चाहिए, परंतु हरेक के अन्य अन्य क्रियाएं चल रही है। आ बहावरो तेने पोताने आधीन जानी महाखेद खिन्न थाय छे, यानी वो सोचता है वैसा नहीं होता है अन्य ही कुछ होता है, वो सब उठकर चले जाते हैं, अरे तेरे मेरा सब कुछ चला गया इसका था कब चला जाने को, ये हमारी ऐसी पोजीशन हो रही है। हाँ, ए प्रमाणे आ जीव अभी इस पर अपने पर घटित करना है, जहाँ पर्याय धारण करे छे यानी जिस पर्याय में चला जाता है जिस देह में देह धारण करता है त्या कोई अन्य ठेकाने थी। देखो अभी ये बहावरो है उसके साथ ये कंपैरिजन थी, वहां भी अन्यत्र कहीं से आकर लोग वहां सामने रुक गए थे, अपने अपने स्वयं की क्रिया करके वो अपने अपने स्वयं चले गए। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसने देह धारण किया, त्या कोई अन्य ठेकाने थी पुत्र घोड़ा ने धनाधिक आवीने स्वयं प्राप्त थाय छे। अभी कोई इसके पुत्र हुए कोई भाई बहन हुए धन भी वो स्वयं के अपने कोर्स में हो उसके उस पुद्गल की जो है आवीने स्वयं प्राप्त थाय छे। सब ले लेना उसके जितने जितने संयोग धनाधिक वैभव वो सब घोड़ा गाड़ी बंगला वो सब। हमारे बाबू भाई मेहता कहते थे लाड़ी गाड़ी माड़ी। लाड़ी समझते लाड़ी यानी स्त्री, हाँ लाड़ी लड़की को कहते लाड़ी गाड़ी माड़ी। हाँ, તેને આ જીવ પોતાના જાણે છે. જૈસે વો પાગલ અપને માનતા થા યે ભી ઇસને વહી ભૂલ કી પણ એ તો પોતપોતાને આધીન કોઈ આવે કોઈ જાય તથા કોઈ અનેક અવસ્થા રૂપ પરિણમે. કોઈ અપને અપને કારણ આતા હૈ, અપને અપને આયુ લેકર આયા હૈ, સમાપ્ત હોતે ચલા જાતા હૈ. યે મહાખેદ ખિન્ન થાય હોતા હૈ. વૈભવ ભી અપને કારણ આયા થા, અપને કારણ ચલા જાતા હૈ. યે જાને પર મહાખેદ ખિન્ન હોતા હૈ. ઘર મેં લડકા પૈદા થા, મહા આનંદ માનતા હૈ ના, સબકો પૂરી દુનિયા કો મીઠાઈ બાંટતા હૈ. તો કહેતે કોઈ આવે કોઈ જાય કોઈ અનેક અવસ્થા રૂપ પરિણમે. અનેક અવસ્થા રૂપ મેં કિસી કા મરણ હો જાય, કિસી કે બીમારી હો જાય, કિસી કે અન્ય કોઈ અવસ્થા હો જાય, એમ તેની પરાધીન ક્રિયા હોય છે. ઉસકી તો ક્રિયા અપને અપને આધીન હૈ. ઉસકા જો કોઈ લૌકિક શિક્ષણ પઢાઈ હો, અન્ય ભી કોઈ જો ચીજે હોય, ઉસકે જો કોઈ અચીવમેન્ટ હોય, વો ઉસકે હા. તો કહેતે ફિર ભી યે ક્યા માનતા હૈ, વો તો પરાધીન હોતી હૈ. તેને પોતાને આધીન માની આ જીવ ખેદ ખિન્ન થાય છે. એ મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક કી વાત હૈ યહાં પર. વો અપને આધીન માનતા હૈ ઓર વૈસા હોતા નહીં હૈ. અપને આધીન માનને મેં ક્યા તકલીફ થી, માનને દો ના, પરંતુ વો નહીં હોતા હૈ તો મહા ખેદ ખિન્ન હો જાતા હૈ. ઉસને અપને આધીન માને, ઉસને ઈચ્છા કી કે એસા હોના ચાહિયે, વૈસા હોના ચાહિયે, ઓર વો તો અપને અપને જૈસા હોના હૈ વૈસા હી પરિણમતા હૈ. યે તો ઇસકે આધીન હૈ હી નહીં હૈ. यहाँ एक स्टार भी लिखा है, वो तो आगे के 12 नंबर के लिए लिखा है. ये तो 11 नंबर में इतना ही बताया उन्होंने, परंतु 11 नंबर के श्लोक के लिए नीचे फुटनोट देखना. मोक्ष प्रावृत में कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, देखो उसको पढ़ेंगे हम. मिला हो पहले पृष्ठ पर? हाँ. स्वपरज्जवसायणम देहे सुयवदिदित्थम अपाणम સુયદાનાય વિષયે મણુયાણમ વર્ધયે મોહ. દેખો સ્વપર અજ્યવસાયણમ, સ્વર પર કે અધ્યવસાય સે, દેહે સુય દેહ મે હી, અવિદિત અથમ અપાણમ. અવિદિત અથમ યાની વો ઉપર બાત આઈ થી ના, અવિદિત આત્મનામ, યહી બાત હૈ. દેહેશુ અવિદિત આત્મનામ, એસા હી લિખા હૈ. और क्या लिखा है? सुय यानी सुत, सुत यानी पुत्र, दाराई यानी पत्नी, यानी आदि. ऊपर भी लिखा है पुत्र भार्यादि विषय, उसके विषय में मनुयाणम मनुष्यों के, वड्डये मोहो, वड्डये ने वर्तते मोह, ऊपर भी वही बताया विभ्रम वर्तता है ना, और यहाँ मोह वर्तता है. बात एक ही है, वही का वही उन्होंने लिखा है. तो अभी हम आत्मभावना में से अभी देखेंगे इसी गाथा, इसी श्लोक को. आत्मभावना में अभी हमको 11 नंबर का श्लोक निकालना है. 45 पेज है. बराबर કહેતે હૈ, દેહ ને આત્મા માનનારા સ્ત્રી પુત્રાદી ને પોતાના માને છે. એને દેહ વિષયક જો જો સંબંધી હૈ ઉસકો અપને માનતા હૈ. જેને ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા ને ન જાણ્યું અને શરીર ને જ આત્મા માન્યું. દેખો તો દ્રવ્ય ભિન્ન ભિન્ન, દ્રવ્યો કો હી જાનને મેં ભૂલ કર દી. લક્ષણ કે દ્વારા મિલે જુલે પદાર્થો કો હમ ભિન્ન જાન સકતે, અલગ કરના નહીં હૈ, જાનના હૈ બસ. બોલે ના રહે, ક્યુકી એક ક્ષેત્ર વગર છોડકર જાયંગે કહાં, લોક કે બહાર તો નહીં જાયંગે. હા. તો કહેતે જેને ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા ને ન જાણ્યો અને શરીર ને જ આત્મા માન્યો. ક્યુકી જહાં દેહ હૈ વહીં પર યે શરીર કી રચના હુઈ હૈ, તો ઉસી કો ક્યુકી વહી દિખતા હૈ ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા વહી જાનને મેં આતા. તેની નજર અંતરમાં ચૈતન્ય ઉપર ન ગઈ પણ બહારમાં નજર લંબાણી. બહારમાં ક્યુ કહા? ક્યુકી ઇન્દ્રિયો કે દ્વારા બાહ્ય મેં ઉપયોગ તો બાહ્ય પદાર્થો કો હી જાનતા હૈ વો, એટલે બહાર હી બહાર ઉસને જાનતે રહા વો. જાનને વાલા સ્વયં અપને કો નહીં જાન રહા હૈ, ઉસકો છોડકર બાકી સબકો જાન રહા હૈ. વાત હૈ ના, કોઈ તૈરને ગયે થે 10 મિત્ર, ફિર બહાર નિકલે हर एक जन गिन रहा है तो नौवीं जन है। अरे कोई तो एक डूब गया, फिर दूसरा कहते नहीं नहीं मैं गिनूंगा, अपने को नहीं गिना बाकी सबको गिना, ऐसा ही कहते हैं। कि कहते हैं कि चैतन्य ऊपर नजर न गई, बाहर मां नजर लंबानी, एटले परमा बीजाना आत्मा ने पण देहती जुदो न जानता शरीर रूपे ज माने छे। यहाँ तो स्त्री पुत्र की बात की, यहाँ तक तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में मेरे ख्याल से वो लिखा था ना, अरिहंत भगवान को भी देखता है तो अपने को शरीर रूप देखता है, उनको भी बाह्य ही अंगों से उनको पहचानता है, भले वो गुरु को यानी मुनिराज को देखे या भगवान को देखे, वहां पर भी उनकी आत्मा उनकी वितरागता सर्वज्ञता उसकी पहचान नहीं, उसको देह रूप ही मानता है। तो यहाँ तो अलग बात है, यहाँ स्त्री पुत्र धन वगैरह की बात है। तो कहते कि परमा बीजाना आत्मा ने पण देहती जुदो जानता, जुदो न जानता चाहिए, ये जो जानता हुआ है न चाहिए, जुदो न जानता शरीर रूपे ज माने छे, तथा बाहर मां स्त्री पुत्र धन वगैरह ने पण पोताना हितरूप जाणीने भ्रम मां वर्ते छे, एम हवे कहे छे। जो श्लोक पढ़ा था फिर दोबारा पढ़ेंगे हम यहाँ पर। स्वपराद्यवसायेन देहेष्व विदितात्मनाम वर्तते विभ्रमः पुंसाम पुत्र भार्यादि गोचरः। ये ऊपर जो पहली लाइन में ना देहेष्व यानी देहेषु अविदितात्मनाम, अविदित आत्मा यानी वो जो जिसको अजान जो है ऐसे, पोतामा तेमज परमा देहने जे आत्मा माने छे अने देहती भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा ने तो जानतो नथी, ते मूढ जीव ने, इसको मूढ कह दिया, ऊंधी दृष्टि, विपरीत मान्यता है ना, ऊंधी दृष्टि बहार मा लंबाय छे, एटले विभ्रम थी ते एम माने छे के आ मारी स्त्री आ मारो पुत्र इत्यादि। अज्ञानी मूल जीव आत्मा नो अजान, ये लिखा ना अविदित आत्मनाम, ये आत्मा से अजान है से, पोताना ने परना शरीर ने ज आत्मा मानी ने भ्रमणाथी वर्ते छे, तेथी बीजा ने पण ते शरीर ऊपर थी ओळखे छे, यानी शरीर रूप ही उसको देखता है, हाँ यानी उतने उसका एग्जिस्टेंस ऐसा मान लेता है। सर्वज्ञ भगवान ने, देखो ये बात यहाँ पर आई, मुनियों ने संतों ने वगैरह बधाए ने पण एज रीते बाह्य दृष्टि थी शरीर रूपेज देखे छे, यानी वहां पर भी शरीर से भिन्न उनके आत्मा की कोई इनको पहचान नहीं, भगवान की भी और गुरुओं की मुनियों की भी, पण शरीर थी भिन्न अंदर नी चैतन्य परिणति वालो आत्मा छे तेने ते ओळखतो नथी। बाहर भी कहें हमको इसको दर्शन करना है, अरे दर्शन करना क्या है, उसके अंतरंग की पहचान नहीं है ना, वो उसको जानना चाहिए, वितरागता क्या है सर्वज्ञता का। मुनि का भी दर्शन करने से क्या होगा, उनके उपदेश सुनेंगे तो फायदा होगा, यानी देखने मात्र से, क्योंकि देखना तो बाहर से चाहते हैं, वो तो शरीर का दर्शन कर लिया उसने, उसको क्या मिला उसमें, पर उतने तक ही वो सीमित करता है अपने। यहाँ लिखा ना सबको वो उसी बाह्य दृष्टि से ही देखता है, पण शरीर थी भिन्न अंदर नी चैतन्य परिणति वालो आत्मा छे तेने ते ओळखतो नथी। शरीर ने ज अज्ञानी देखे छे, पण आत्मा शू छे, आत्माना ज्ञानादि भावो शू छे तेने ते ओळखतो नथी। क्योंकि आत्मा को पहचानना है तो उसके लक्षण द्वारा पहचानने पड़ेंगे, ये तो ना अपने आत्मा को पहचानते तो दूसरे का सवाल ही नहीं है पहचानने। जड़ कर्म ने लीधे आत्मा ने विकार थाय एम माननार पण खरेखर आत्मा ने जड़ती भिन्न ओळखतो नथी। देखो इसे और सूक्ष्म बात बताई, वो क्या कहता है, क्या मानता है, मानने वाली की बात है कि कर्म जड़ कर्म के कारण आत्मा को विकार हो रहा है, आत्मा में जो विकार हो रहे उसके अपने उपादान से हो रहा है, वो उसके अपने योग्यता है, अशुद्ध उपादान भी उसको कहो तो कहो, पर वो जीव की पर्याय, जीव स्वयं उस रूप परिणमित हो रहा है, तब सामने कर्मों का उदय पाया जाता है। तो इसमें तो उसी के कारण विकार होता है मानव, उसने भी खरेखर आत्मा ने जड़ती भिन्न ओळख्यो नथी, क्योंकि कर्म तो जड़ है और वो यानी इतने पराधीन हो गए ना, यहाँ पर भी वो जड़ हमारा कंट्रोलर हो गया, ये उसने मान लिया, ये उसकी भूल हो गई। पोताना आत्मा ने ज्ञानानंद स्वरूपे जाण्या विना बीजाना आत्मा ने पण वास्तविक ओळखाण थती नथी। कैसे जानना है अपने को ज्ञानानंद स्वरूप, अपने में राग है, विभाव है, उस रूप भी अपना कायमी स्वभाव नहीं है, तो अपने को विकार, अब शरीर से मैं तो जुदा हूँ परंतु मैं विकार रूप हूँ, कैसा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत पुण्य वाला हूँ, ऐसा ऐसा मानने वाला है, सामने वाले को भी वैसा ही समझता है, उसके जो कोई क्रोधादि परिणाम है, ये बहुत लोभी है, बहुत क्रोधी है, यानी सामने वाले को भी ऐसा ही पहचानता है वो। इसलिए उन्होंने ये और एक सूक्ष्म बात उसमें के वहां केवल देह की बात की थी, यहाँ उन्होंने जड़ कर्म की भी बात उठाई। शरीर की क्रिया मारा थी थाय एम जे माने छे ते शरीर ने ज आत्मा माने छे, क्योंकि देखो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कोई क्रिया, कोई हेल्प, मदद, असर कुछ नहीं करता है, तो मैंने शरीर की क्रिया की तो मैं शरीर रूप हूं माना ना उसने, क्योंकि परिणमन तो द्रव्य का अपना होता है, तो शरीर का परिणमन शरीर में, तो ये मेरा परिणमन है मानने वाला अपने को शरीर रूप मान रहा है, ये कहना चाहते हैं। देखो शरीर ने क्रिया मारा थी थाय, हम जीव द्रव्य है तो हमारी अपनी क्रिया अपने से होगी, तो जीव करता है क्या अकरता है आशा बहन, जीव करता है क्या अकरता है, करता भी नहीं अकरता भी नहीं, तो क्या है कहा कि नहीं है कहा, जोर से बोलो। अच्छा भीग लगाया, अच्छा तो पर का अकरता है और अपने भावों का करता है, अपने परिणाम का करता है कि नहीं, क्योंकि वो स्वयं अपने पर्याय रूप से परिणमित हो रहा है, तो उसका हम कर्ता कहेंगे उसको। तो कहते यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो शरीर की क्रिया मारा थी थाय छे हम जे माने छे, ने परद्रव्य की क्रिया अपने से होती है मानना, अपने को परद्रव्य रूप मान रहा है, ते शरीर ने ज आत्मा माने छे, ने आत्मा ने जड़ माने छे, क्योंकि जड़ की क्रिया करने वाला जड़ हो गया। आत्मानु लक्षण तो ज्ञान छे एम ते जानतो नथी, वो लक्षण ही ज्ञान है और ज्ञान की भी क्रिया जानने रूप तो चल ही रही है, परंतु उसने मैं जानने वाली जो क्रिया है वो मेरी है ऐसा कभी लगता नहीं उसको, क्या ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठा है कुछ क्यों नहीं करता, ऐसा कहते ना, कहना बात अलग है पर मानते भी ऐसा ही है कि सुबह से क्या कि हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया हमने जाना कि नहीं जाना, वो अपनी क्रिया ऐसा लगता नहीं हमको, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि जानने वाली ये हमारी क्रिया है, ये परद्रव्य का हमने कुछ काम कर दिया तो हमने किया ऐसा लगता है, होता है कि नहीं, अपने पर सोचना है हमको कि हमने इतने काम किए और नहीं किए तो आज हमने बहुत आराम किया मतलब होते हुए काम में भी हमने जानने मात्र का कार्य किया था, अब जो आराम है तो उसमें भी हमने जानने मात्र का कार्य। देखिए आत्मा नो लक्षण तो ज्ञान छे एम ते जानतो नथी, ज्ञान लक्षण ही आत्मा छे ने शरीर तो जड़ परमाणु थी लक्षित छे। देखिए कितने बार है मैं तो चेतना हूँ, मूर्ति प्रदेशों का पुंजो आदि आदि बातें आती है, ज्ञान आदि अनंत गुणों का धारक वगैरह, वो तो एक है आत्मा चैतन्य गुण का धारी, असंख्यात प्रदेशों का पुंज, और यहाँ शरीर तो क्या है, ये तो अनंत परमाणुओं का पिंड है, वो वहां पर एक द्रव्य नहीं अनंत द्रव्य जो है परमाणु नाम के, तो उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण हुए उसके गुण है, वो उसकी पर्याय उसमें होगी। शरीर मां क्षणे क्षणे अनंता परमाणु आवे छे ने जाए छे, देखो स्वामी जी का कितना अभ्यास होगा ना, क्योंकि जैसे कर्मों के अनंत परमाणु हर समय आते हैं और पुराने कुछ निकल जाते हैं, शरीर में भी हर समय अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है, और उसकी स्थिति कितनी बनती मालूम है, जैसे कर्मों की स्थिति कितनी बंधी है, तो कुछ भी होगा ना, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक कुछ भी बन सकती है। मिथ्यात्व में ज्ञानावरणादि में 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक, संगी पंचेंद्रिय होगा तो अंत कोड़ा कोड़ी से 30 तक ज्ञानावरण, कुछ भी अपने अपने भावों के अनुसार। तो ऐसे शरीर के परमाणुओं की स्थिति कितनी पड़ती है, ये मेरा प्रश्न। अपनी आयु प्रमाण, जितनी आयु लेके आया है, जितनी आयु बांध के आया है उतनी, हाँ उसको गलित अवशेष कहेंगे। यानी जीवन के पहले समय में उसने जो परमाणु ग्रहण किए उसकी स्थिति, जो अभी आयु लेकर जन्मा है, मान लेते हैं 100 साल की आयु लेकर आया है, तो 100 साल के जितने समय उतने उसके निषेक बनेंगे। अब वो जीव हो गया, 10 साल का बच्चा हो गया, उस समय जो शरीर के परमाणु ग्रहण करेगा उसमें कितने निषेक बनेंगे, स्थिति कितनी पड़ेगी, 90 साल के जितने समय है उतने उसमें स्थिति पड़ेगी। यानी वो हर समय में उसमें से एक एक निषेक गल रहा है, हर समय अनंत आते हैं, हर एक की स्थिति जो अंतिम समय हमारा मरण का समय,
पहले आते और जाते भी
है। आते जाते सबके सब नहीं जाते, जाते देखो पहले समय में 100 साल के जितने परमाणु उतने ग्रहण किए, उसके एक एक निषेक 100 साल तक चले और पहला निषेक खिर जाएगा। दूसरे समय में ग्रहण किए वो 100 साल में एक समय कम वाली स्थिति पड़ी, उसका एक निषेक और पहले वाले का दूसरा निषेक खिर गया। नहीं, थोड़े काल के लिए उसकी स्थिति पूरी, ऐसा नहीं होता। हर एक की अंतिम स्थिति आयु जितनी है ये नक्की है,
के बाद वो जाता है कि जैसे
इमीडिएट। कर्मों में तो आबादा है, इसमें आबादा नहीं होती। कर्मों में आबादा काल होता है, आबादा काल के बाद वो खिरना चालू होता है। हाँ, कोई ना कोई परमाणु, जैसे वो हमने उदय काल जिसको कहेंगे, निषेक में हम उसको मान लेते ना, एक एक साल का एक एक निषेक भी बनेंगे समझाने के लिए, तो 100 निषेक तो बने ना, दूसरे समय में 99 निषेक बने, दूसरे वर्ष में हम वर्षों की बात करें, तीसरे वर्ष में 98 निषेक बने उसके, ख्याल में आते हैं बात। तो उसमें से एक एक निषेक भी खिरता चला जाएगा। अब मरण के समय क्या होगा, हर एक का अंतिम निषेक बाकी है, उस समय भी एक समय प्रबद्ध औदारिक शरीर का ग्रहण किया, ग्रहण तो किया, अभी क्या होगा, हर एक का एक एक निषेक और ये पूरा लॉट अभी गलेगा, इन्हें जीव ही निकल जाएगा। जीव के साथ उसकी इतनी संयोग रूप स्थिति थी, अभी उसका जो कुछ अलग अलग जो परिणाम है वो वैसे हो जाएगा। कदली घात होता तो सब, क्योंकि वो तो ऐसी, हाँ वो सब जीव ही निकल जाएगा ना वहाँ से,
बीच में चले जाएगा, एंड तक ही रहेगा,
थोड़े थोड़े एंड तक रहेगा, बीच में तो जा ही रहे ना, एक एक निषेक तो खिर ही रहा है, जो ग्रहण किया हाँ, यानी 100 साल के पहले हुए, उसका नीचे का एक निषेक गल गया, नहीं नहीं ऐसा बीच में पूरा गल गया ऐसा नहीं होता। वही तो नए नए आते हैं और नए और पुराने में से और एक एक हर एक का एक एक निषेक चला जाएगा। ये निषेक रचना समझे तो ये समझ में आती बात, हर समय नया नया ग्रहण कर रहा है और हर समय का एक एक निषेक गल ही रहा है। जैसे हमने जन्म के समय जो लिए थे उसके आज तक कितने, अभी हमारी उम्र मान लेते 65 हो गई, 65 साल के हो गए, तो जन्म के समय जो लिया था उसके 65 साल के जितने समय है उतने निषेक गल गए। अभी मान लेते अभी 35 ईयर्स अभी बाकी है तो उतने भी निषेक है सत्ता में, ऐसे समझना कहाँ ग्रहण किए उसे, उसमें भी अनंत का ग्रहण होता है और सभी निषेक मिलकर अनंत जा भी रहे। यानी शरीर के भी परमाणु अनंत आते हैं और अनंत जाते हैं, ये बात देखो उन्होंने बताया ना यहाँ पर, शरीर में क्षणे क्षणे अनंता परमाणु आवे छे ने जाए छे। अभी ये बिना अभ्यास के तो थोड़े ही बोलेंगे
लेकिन युवानी तक कम जाते हैं और युवानी के बाद ज्यादा जाते हैं,
ऐसा कुछ नहीं है। वो उतने ही निशे गलेंगे। हाँ, बड़ा होता है, छोटा होता है, उसमें अनंत अनंत है। हाँ, आपको दिखता है बड़ा और छोटा, क्योंकि वो तो अरे मोटा भी हो जाएगा तो क्या है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। उसका समय प्रबंध का जो प्रमाण है योग के अनुसार, उसके जो कुछ ग्रहण कितना करता है, योग के अनुसार ग्रहण करता है। औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से जो ग्रहण करेगा, हाँ उसमें योग में ही ना दिखता होगी, परंतु उसकी स्थिति तो उतनी पड़ेगी। हाँ, परमाणुओं की संख्या में ही ना दिखता हो सकती है। जैसे हम कर्मों में भी घटित करते हैं ना, योग से समय प्रबद्ध रिलेटेड डायरेक्ट, योग दो गुना है तो समय प्रबद्ध दो गुना होता है, योग असंख्यात गुना होता है तो समय प्रबद्ध असंख्यात गुना वाला हो जाता है, योग से रिलेटेड है डायरेक्ट। देखो क्या कहते हैं, शरीर में क्षणे क्षणे अनंता परमाणु आवे छे ने जाए छे, पण तेथी काय आत्मा में एके प्रदेश घटतो के बत्तो नथी। जाड़ा होने पर मानते हैं कि हमारा कुछ वधा नहीं है, घटा नहीं है, अभी ऐसा ही हुआ तो आत्मा की असंख्य। हाँ, मोटा मोटा होने दो, छोटा होने दो, पर आत्मा उसमें तो समा जाता है ना, आत्मा का कुछ नहीं। हाँ होने दो ना, परंतु उसमें जीव का क्या हुआ, उसके प्रदेश बढ़े के नहीं बढ़े, अब फैल गए उतने में। हाँ, अरे ममता का ही उसके संकोच विस्तार है, आत्म प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। तो वहां पर अभी विदिशा में बहुत जगह ये प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उसमें असंख्यात प्रदेशों का जो पुंज है, संकोच विस्तार शक्ति युक्त, तो कौन सी आत्मा की शक्ति है संकोच विस्तार होने वाली? हाँ, असंकुचित विकासत्व। तो कहते हैं तो वहां पर भी विद्वानों ने यही उत्तर दिया था, उन्होंने ये असंकुचित विकासत्व ये गुणों का मर्यादा सीमा यानी लिमिटलेस विकास होता है, ये उसका कार्य है, प्रदेशों से उसका कोई संबंध नहीं है, यही उत्तर देते हैं सब जगह। मैंने बोला उससे उसका कुछ नहीं, वो नियत प्रदेश है तो आत्मा के प्रदेशों की संख्या वही कही है। हाँ, उसका लोक प्रमाण संख्या है, आधे लोक प्रमाण उसके अवगाना होती तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को अवगाना, एक प्रदेश आकाश के एक प्रदेश पर जीव के दो प्रदेश हो जाते। पहले बताया था ना नियत प्रदेश, इन्होंने भी हाँ वो तो मंगलायतन में यही सी बात पर हमारी बहस हुई थी वो राकेश पंडित के साथ। वो कहते थे प्रदेश का ही संकोच विस्तार होता है, अरे प्रदेश उसी को कहते जो छोटे में छोटा है, उसका संकोच कैसे होगा, और उसका विकास हो जाएगा तो वो तो प्रदेश बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अवगाहना देता है जीव के एक प्रदेश दूसरे को अवगाहना देता है, तो इतना बड़ा महामत्स्य वाला है चीकी बन जाएगा तो क्या होगा, उतने ही एरिया में उसके सारे आत्म प्रदेश आ गए, तो एक आत्म प्रदेश ने दूसरे आत्म प्रदेश को अवगाहना दी तभी तो ये संभव है, क्योंकि प्रदेशों की संख्या उतनी रहनी है और प्रदेशों का साइज तो कुछ कम होने वाला नहीं है, तो एक ही बात रही ना अभी, एक ही प्रदेश दूसरे प्रदेश में अवगाहना रूप से हो जाए। ऐसे हम रुमाल पर घटित करते तो फोल्ड होता है, पर फोल्ड में उसके भी दो लेयर्स अलग अलग है, इसमें भले वो फोल्ड रूप हो जाए परंतु तो फिर भी वो अवगाहना रूप से एक दूसरे में समा जाते हैं, उसका अस्तित्व भिन्न है, पर आकाश की अवगाहना ऐसी कि उसी में यानी जीव में भी अवगाहना है, अपने प्रदेशों को अवगाहना, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश को अवगाहना देता है। अपने ही प्रदेशों में, क्योंकि कितना भी छोटा आकार हुआ तो लोक का असंख्यात्वा भाग है। देखो यदि लोक के संख्या लोक का आधा अगर उसका साइज होता तो एक प्रदेश पर आत्मा के दो प्रदेश आते, लोक का वन फोर्थ होता तो एक प्रदेश पर चार आते हैं। लोक का 1/10 होता तो एक पर 10 प्रदेश आते। लोक का 1000वां होता तो एक प्रदेश पर 1000 प्रदेश आ जाते। अब ये लोक का असंख्यातवा भाग तो ऑक्यूपाय करता है तो एक ही प्रदेश पर असंख्यात प्रदेश उसके आ जाते हैं। फिर भी वो कभी एक प्रदेश ही नहीं होगा, ये कहना चाहते हैं। असंख्यात है कौन सा? असंख्यात वो घनांगुल का असंख्यातवा भाग मिनिमम जो निगोद वाला है उतना तो होगा, रहेगा ही रहेगा। अभी अवगाहना के बहुत भेद है, जितनी जिसकी अवगाहना होगी उसको भी वो पर्टिकुलर असंख्यात ही कहेंगे उसको। वो लोक वाला असंख्यात अलग है। और मान लेते हैं नाखून जितनी असंख्यात प्रदेशों की अवगाहना उसकी हो गई, तो ये जो लोक प्रमाण असंख्यात जो संख्या है वो इतने में उसके समा गए, तो उसने एक प्रदेश पर उसके असंख्यात प्रदेश आ गए। यानी जीव के अपने ही असंख्यात प्रदेश एक एक प्रदेश पर आ गए, क्योंकि वो लोक का असंख्यातवा भाग उसने ऑक्यूपाई किया। ख्याल में आती ना, हम कितना भी बड़ा महामत्स्य भी क्यों ना हो जाए, वो लोक का असंख्यातवा भाग है। देखो शरीर में क्षणे क्षणे अनंता परमाणु आवे छे ने जाए छे, पण तेथी कहीं आत्मा में एक एक प्रदेश घटतो के वत्तो नहीं। आत्मा के प्रदेश तो भिन्न ही है, उसको क्या लेना देना शरीर के परमाणु ज्यादा आवे के कम हो जाए के कुछ हो जाए। उद्गलना पिंड थी चैतन्य पिंड तद्दन जुदो छे, आम जे नथी जानतो ते बहिरात्मा पोताना पोतामा आत्मा ने शरीर रूप ज माने छे, अने बीजामा पण तेना शरीर ने देखी ने तेने ज आत्मा माने छे। आ ज्ञानी बोले छे, खाए छे, चाले छे, हसे छे, अज्ञानी देहनी चेष्टा ने ज आत्मा तरीके देखे छे ने तेनाथी ज्ञानी ने ओळखे छे। और वो ज्ञानी की पहचान भी करना चाहता है तो कैसा रहता है, क्या करता है, कैसे बैठता है, उठता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, क्योंकि वो तो देह को ही आत्मा मान रहा है, तो वो देह में उसकी ज्ञानी की पहचान भी उसी से करना चाहता है। ख्याल है ना बात, ये अज्ञानी की भूल हो रही है। पन ज्ञानी नो ज आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा छे, देह थी पार ने छे राग नो पन ते पार छे ने चाहिए, पार ने छे हुआ है। हाँ पहला छे और बाद में ने चाहिए ना, वैसे आपके उसमें है ना। हाँ हमारे यहाँ पहले ने आया बाद में छे आया। हाँ देहती पार छे ने रागनो पन करता ते नथी, ते करता नथी पन चल करता ते नथी, ठीक है ये बराबर है। पन ज्ञानी नो ज आत्मा, ये जो बराबर लगाए कि ज्ञानी नो आत्मा, जो नहीं है ना यहाँ। हाँ मुझे भी वो पढ़ते समय कुछ देखो फिर से, यानी अज्ञानी क्या करता है, देहनी चेष्टा थी आत्मा ज्ञानी ने ओळखे छे, पण ज्ञानी नो आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा छे, हाँ देहती पार छे ने राग नो पण करता ते नथी, बराबर ते तो आनंद ने ज्ञान रूप परिणमे छे, ए ओळखे देहती पार ने रागनो पण करता ते नथी, देहती पार छे ने रागनो पण ते करता नथी। तो हाँ तो वो किसका करता है, तो जिस रूप परिणमता है उसका करता है। तो कहते इसलिए
तो ज्ञान का ही करता
है। हाँ तो इसलिए ज्ञान ने ज्ञान आनंद ने ज्ञान रूप परिणमे छे एम ओळखे, ये तो अज्ञानी उसको पहचान नहीं रहा है, तो उसकी पहचान क्या है, तो ज्ञानी तो ज्ञान और आनंद रूप से परिणम रहा है, तो एम ओळखे तो ज्ञानी ने साची ओळखान थाय। इसलिए कहते ना अज्ञानी को ज्ञानी की सच्ची पहचान नहीं हो सकती। अब कहेंगे मुनिराज की तो होगी क्योंकि बाह्य क्रियाओं के द्वारा, वहां पर भी बाह्य क्रिया को ही देख रहा है वो। जो अज्ञानी है जिसने अपने आत्मा को देह से जुदा नहीं पहचाना है, वो सामने वाले को वैसा पहचान नहीं सकता। हाँ वो अनुमान से कुछ बातें करेगी, शास्त्र के अभ्यास के कारण कुछ कहेगा, वो बात अलग। पण एने तो अज्ञानी ओळखतो नथी, તે તો શરીરની ચેષ્ટાને જ દેખે છે. પોતાના આત્માને નહીં દેખનારો અંધ અંધ બતાય, બીજાના આત્માને ક્યાંથી દેખી શકે? કેટલી વાત સટીક બતાઈ હે ના. એને બહાર ભી જહાં જ્ઞાની કી બાત આતી હૈ તો વો તો ઉસકી બહાર કી ક્રિયા ઉસકે રાગ ભાવ સે ઉસકો પહેચાના ચાહતે. इसको कहते इससे तो हम अच्छे हैं, ऐसा सुनने को मिलता होगा. हाँ वो राम की बात हो गई है, ऐसा हुआ तो दूसरी की वो इससे तो हम अच्छे हैं. शरीर नो नाश के उत्पत्ति थता जाने के जीवज नाश पाम्यो ने जीव उत्पन्न थयो एम अज्ञानी माने छे. કેમ કે તેને શરીરને જ આત્મા માન્યું છે. પોતામાં પણ શરીર છૂટતા મારો નાશ થઈ જશે, હું મરી જઈશ એમ માને છે, એટલે મૃત્યુનો ભય તેને સદાય રહ્યા જ કરે છે. પણ હું તો જ્ઞાન સ્વરૂપ અસંયોગી છું, શરીર જડ છે, તેના સંયોગ વિયોગે મારી ઉત્પત્તિ કે નાશ નથી એમ અજ્ઞાની જાણતો નથી. देखो हम ये कर्णन युग में भी अभी हमारे वहां पर भी विषय चला ना था, तो यहाँ तो शरीर के परमाणु को ले रहा है, कर्म के ग्रहण कर रहा है. अभी मरण हुआ, इमीडिएट नेक्स्ट समय में दूसरी आयु चालू भी हो गई, उसका उदय चालू हो गया, वहां के शरीर के परमाणु नए चालू कर दिए. अनादि से ऐसा ही करता है ना जीव, तो वही का वही कायम है. यानी जीव उसी को कहते जिसका कभी मरण ही नहीं होता, फिर भी मरण का ऐसा भय उसके अंदर बैठा हुआ है. यहाँ कहते ना, पण हूँ तो ज्ञान स्वरूप असंयोगी छू, शरीर जड़ छे, तेना संयोग वियोगे मारी उत्पत्ति के नाश नथी एम अज्ञानी जानतो नथी. वरी शरीर ने ज आत्मा मान्यो एटले शरीर ने पोषनारा पांच इंद्रियना विषय भोगों ने ते सुखकारी माने छे. शरीर में हूँ तो इंद्रिय जिससे पुष्ट रहे तो वो सुखकारी है, जिसकी विषय भोग जिसको सुखकारी है. तेथी बाह्य विषयों थी ते खसतो नथी ने चैतन्य सुख ने जानतो नथी. यानी एक इंद्रिय का भी खाना भोजन कर दिया, फिर अभी दूसरे इंद्रिय के इसमें चल गया, फिर तीसरे चलता ही रहता है उसका. विषयों ना रस ने लीधे चैतन्य ना आनंद रस ने चूकी जाए छे, क्योंकि उसका उपयोग तो बाह्य विषयों के रस लेने में ही लगा है. उसका विषयों का रस तो ले नहीं सकता है, उसका जरूर उसके प्रति जो राग है वो राग का रस है उसको, और राग का वेदन कर रहा है और मान रहा है कि मैं विषयों का वेदन कर रहा हूँ. परद्रव्य को तो वेदता नहीं है. हमने देखा ना वेदन और ज्ञान की पर्याय क्या है. वेदन तो अपने पर्याय का होता है, ज्ञान तो स्वपर सबका होता है. तो ये मानता है कि मैं पर का वेदन कर रहा हूँ, मैं विषयों का वेदन कर रहा हूँ, उससे में से मैं रस ले रहा हूँ, ये इसकी मान्यता है. तो उसके कारण क्या है, उसका उपयोग तो उसी में पर में ही रहा है और ये मान्यता वो भ्रांति तो चल ही रही है उसकी. तो कहते अपने जो चैतन्य का आनंद रस है उसको वो तो चूक जाता है. अने बाह्य मां प्रतिकूलता आवे रोगादि थाय त्या पोताने दुखी माने छे. आ रीते एकला बाह्य संयोग थी ज पोताने सुखी दुखी मानी ने क्या कहा, मात्र बाह्य संयोगों से ही मैं सुखी दुखी हूँ. तेमाज राग द्वेष मोह थी प्रवृत्ति करे, अकेला राग द्वेष नहीं मोह में वो मिथ्या मान्यता पड़ी है ना उसके कारण अंतर्मुख वर्तो नथी. यानी कभी वो अपने स्वयं के स्वरूप जानने की उस संबंधी विचार की कोशिश नहीं करता. आओ बहिरात्मा छे, खरेखर कोई पण संयोग पुत्र स्त्री आदि आत्माना उपकारी नथी, ते आत्मीय वस्तु नथी, छता मोह ने लीधे बहिरात्मा तेने आत्मीय मानी ने उपकारी माने छे. जहाँ अनुकूल संयोग मळे त्यां तेमा सुख मानी ने संतुष्ट थई जाय छे, राग मां लयलीन थई जाय छे. देखो राग ने अकेला राग ने द्वेष में भी उससे इतना हावी हो जाता है कि अपने को उससे जुदा नहीं, उसका कोई विचार ही नहीं है, बस उसी में वो राग रूप या द्वेष रूप जो हुआ है, प्रवर्तन करता है, जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो उसको फुलफिल करने में उसका पूरा दिमाग, उसका उपयोग उसी में लगा रहता है। विकल्प के अलावा कुछ कर ही तो नहीं सकता, पर का तो कुछ कर ही नहीं सकता है, उस संबंधी विकल्प ही करते रहता है और उसका सारा ही समय जो है उसी में चला जाता है। यहाँ लिखा ना, राग में लयलीन थी जाए छे, ने जहाँ तेनो वियोग थाय ने प्रतिकूलता आवे त्या महासंताप करे छे, शोक में तल्लीन थी जाए छे। ये परवस्तु तो इसके अधीन नहीं है, वो अपने अपने अधीन परिणमती है और वो शोक करता रहता है। पण राग द्वेषना चक्कर थी छूटीने चैतन्यनी शांति में आवतो नथी। इन्हें शांति का तो पूरा माल उसी के पास भरा हुआ है। देहादि संयोग थी भिन्न मारु चैतन्य तत्व छे, एम जो ओळखे तो बधा संयोग माथी राग द्वेष नो अभिप्राय छूटी जाए। देखो, राग द्वेष भी होते रहेंगे कुछ काल तक, क्योंकि अभी तो ये अनंतानुबंधी मिथ्या तो चला भी जाएगा, तो भी जितने कषाय है उस मात्रा में होगे वहां पर। पर यहाँ क्या लिख, हाँ, उससे भी विकल्प मेरे से जुदे है, उसको जुदा जानना है, अटकाने की कोशिश करने उसको कर्ता मानकर बैठा है। हाँ, यानी ये विकल्प है, यानी राग द्वेष रूप विकल्प चल रहे, विकल्प है ये, राग द्वेष चल रहे, उससे मैं जुदा हूँ, इतना लेना है। विकल्प वो ज्ञानात्मक वाली वो विकल्प की बात नहीं लेना है वैसे तो, ये तो राग द्वेष वाले जो विकल्प है, कि ज्ञान भी विकल्पात्मक यानी भेदों को जानता है, वो विकल्प नहीं लेना यहाँ पर। हाँ, यहाँ क्या क्या है, देखो, अपने को यदि उसने पहचाना तो क्या होगा, सभी संयोग में से जो राग द्वेष का अभिप्राय वो छूटी जाए। राग द्वेष अभी भी देखो, अभिप्राय छूट जाने पर भी वो राग द्वेष कुछ काल तक होते रहेंगे। जैसे समय दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वाला, चौथे के पांचवे वाला भी है, उसके भी राग द्वेष उस मात्रा में होगे वहां पर। जैसे उदाहरण देते हैं, पंखा बंद करने के लिए हमने स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा बंद हुआ कि नहीं, अरे घूमते हुए दिख रहा है ना, वो बंद होने के लिए घूम रहा है। ऐसे वहां राग द्वेष कुछ काल तक होगे भी, परंतु अभी उसका जो घुमाने वाला हाथ निकाल लिया उसने, जैसे कुमार का चक्र है, पहले हाथ से डंडा से वो घुमाता है जोर जोर से, हाथ निकाल देता है, हाथ निकाल ले तो पूरा घड़ा बनाने तक वो घूमता रहता है। घूमता हुआ भी अपने उसके हाथ निकाल लिया है उसका, ये घुमाने का जो हाथ से घुमाने का है उसके, उसको बंद कर दिया उसने, अभी वो घुमा नहीं रहा, वो घूम रहा है, वो घुमा नहीं रहा। ऐसे यहाँ राग द्वेष होते हुए दिखाई देगी, अभी उसका कर्ता होकर वो राग द्वेष नहीं कर रहा, फिर भी हो गए कुछ काल के, उसका वो ज्ञाता रहता है। हाँ, देखो, अभिप्राय छूटी जाए छे ने चैतन्य ने अपूर्व शांति थी जाए छे, क्योंकि इसको जो दुख था वो राग द्वेष का ही था। अभी उसके तो अभिप्राय में से, तो संयोग में से वो राग द्वेष का अभिप्राय छूट गया है, तो उतनी शांति तो होगी होगी। ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा सिवाय पुण्य पाप थी के बाह्य संयोग थी पोताने जे ठीक माने छे, अकेले बाह्य संयोग नहीं, उसको देख देख कर जो अपने पुण्य पाप हो रहे उसको भी ठीक मान रहा है, भगवान के दर्शन करने का भाव, यात्रा का भाव, मुझे इतने शुभ भाव थे, उसको ठीक है, और पाप किसी का बुरा नहीं, इसको ऐसा ही करना चाहिए, वो भी ठीक मानकर ही कर रहा है कि नहीं। किसी को मान देते, मारता है, गाली देता है, या उसके प्रति जो कुछ उसको करता है, तो वो तो ठीक मानकर ही कर रहा है, तो पाप के भाव भी, पुण्य पाप के परिणाम भी वो ठीक माने छे। ते बहिरात्मा छे, ते बाहर माज पोतानु अस्तित्व माने छे, यानी बाह्य बाह्य में ही रहा करता है वो, तो अपने स्वयं के अस्तित्व को कभी पहचानता नहीं, पोताना चैतन्य ना भिन्न अस्तित्व ने ते जानतो नथी, यानी सबसे जुदा मेरा अस्तित्व है और अस्तित्व ने परिपूर्ण है, वहां पर ही पड़ा है, पूर्ण वस्तु वहां पर है कि नहीं है। हाँ, तो उसने संयोग जितना है अपने को मान लिया, पर्याय जितने अपने को मान लिया, वो पर्याय के पीछे पूरी वस्तु पड़ी है। देह तेज हूँ ने देह ना संबंधी ते बधाए मारा संबंधी, એવો દૃઢ અભિપ્રાય અજ્ઞાનીને ઘૂંટાઈ ગયો છે અને વહી બારંબાર બારંબાર ઉસીને એટલે પર સાથેનો સંબંધ તોડીને પોતાના સ્વભાવ સાથે સંબંધ કરતો નથી. એ સંબંધ તોડનારને અભી ક્યા ભાઈ હૈ ઉસકો ભાઈ નહીં કહેના વો બાત નહીં હૈ પુત્ર કે વો તો આસુ મેરા નહીં હૈ કહેને કી બાત નહીં હૈ યે માન્યતા કી અભિપ્રાય કી બાત હૈ. એસલે કહેતે પર સાથેનો સંબંધ તોડીને જબ એસા પડતે તો એસે લગતા ના અભી સબ ધન સંપત્તિ નિકાલ બહાર કરો યે હા હૈ. પોતાના સ્વભાવ સાથે સંબંધ કરતો નથી. અભી પર મેં પૂરા પહેલા પર તો શરીર કો હી લેના હૈ ઉસકો તો ભૂલ જાતા હૈ ઓર બાકી પર કો પર શમશાન ભર્યા કે અર્થાત સમ્યક શ્રદ્ધા જ્ઞાન કરતો નથી તેથી તેને સમાધિ થતી નથી અને દેહ કે હોતે હુએ રાખ કે હોતે હુએ ઉસકો યે સમાધિ અને અંતરલીનતા જો હૈ ઉસમે કોઈ બાધા નહીં હૈ. ઉસકા લક્ષ્ય છોડના હૈ સંબંધ માના થા વો છોડના હૈ માન્યતા મેં પકડ કર રખા થા વો માન્યતા છોડની હૈ ઓર કુછ નહીં કરના હૈ. યહી રુકેંગે હમ. जावानी के ज्ञान ते तुझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो.